लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। जो अपनी भूमि जोतता उसे रोटी की कमी नहीं होगी, जो व्यर्थ के कामों में लगा रहता वह दरिद्रता का शिकार बनेगा। ईमानदार व्यक्ति को प्रचुर आशीर्वाद प्राप्त होगा। जो जल्दी धनी बनना चाहता उसे दंड दिया जाएगा। पक्षपात करना अनुचित है, किंतु रोटी के लिए मनुष्य पाप करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति धन के लिए तड़पता है, वह नहीं जानता कि वह दरिद्र बनेगा। चापलूसी करने वाले की अपेक्षा डांटने वाला कृपा पात्र बनता है। जो अपने माता पिता की चोरी करता और कहता है कि यह पाप नहीं है, वह डाकुओं का साथी है। श्रोताओं, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के 19 से लेकर 24 तक के पद। इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। 28वें अध्याय के अंतिम पदों में सूक्ति ग्रंथ के लेखक ने उन्हीं बातों को दोहराया है जो अब तक वह कहता आया था। इन पदों में एक बार फिर मानो लेखक सच की प्रशंसा करता तथा बेईमानी, लोभ, लालच, ईर्ष्या और दुष्टता की निंदा करता है। विश्वासियों को इन दुर्गुणों से दूर रहने की वह सलाह देता है। मसलन, जो लोग मेहनती हैं उन्हें भरपूर रोटी मिलेगी जो उनके और उनके परिवार के लिए जरूरी है और जिससे वे गरीबों को भी दान दे पाएंगे। मेहनती लोगों के विपरीत जो लोग आलसी हैं, लापरवाह हैं, वे बिना मेहनत के ही सुख की तलाश में रहते हैं। जो व्यक्ति जमीन जोतता और मेहनत करता है वह सुखी रहेगा, जबकि जो जमीन रखकर भी उस पर खेती नहीं करता बल्कि व्यर्थ लोगों के पीछे जाता है, उनके साथ मौज मस्ती करता है और व्यर्थ खेलों में शामिल होता है, अपना समय बर्बाद करता है, वह गरीबी में जिएगा। 20वें पद में श्रोताओं, लेखक खुशी के लिए झूठे और धोखेबाज तरीकों के प्रति सावधान करता है, क्योंकि जो व्यक्ति अमीर बनने की जल्दी करता है वह उचित रीति से धन नहीं कमाता बल्कि धोखाधड़ी से ऐसा करता है। वह निर्दोष नहीं होगा और ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र कभी नहीं बन पाएगा। आगे 21 से लेकर 24 तक के पदों में लेखक पक्षपाती, ईर्ष्यालु, चापलूसी और चोरी करने वाले व्यक्तियों की निंदा करता है। दैनिक व्यवहार में पक्षपात अच्छा नहीं है। न्यायालय में और किसी भी कार्यस्थल पर पक्षपात की निंदा की जानी चाहिए। इस नीति वचन का संदेश यही है कि हम जाति, वर्ग, राष्ट्रीयता या प्रभाव के आधार पर किसी का पक्ष न लें और न ही रोटी के लिए पाप करें। हमारी कोशिश यही रहे कि रोटी तक के लिए हम किसी प्रकार के अपराध में न लगें। नबी एजेकियल के ग्रंथ में झूठे नबियों को फटकार बताते हुए नबी कहते हैं, तुमने मुट्ठी भर जौ और रोटी के टुकड़ों के लिए अपराध कर प्रभु का अपमान किया है। अस्तु, रोटी के अभाव में भी अपराध न करना मजबूत व्यक्तित्व का परिचायक है। फिर ईर्ष्यालु व्यक्ति की निंदा करते हुए लेखक कहता है कि वह धन के पीछे भागता है, वह कंजूस होता है और किसी की मदद नहीं करना चाहता, किंतु धन उसे कभी भी सुख नहीं दे पाता है। इसी प्रकार श्रोताओं, चापलूसी करने वाले लोगों को प्रायः लोग पसंद करते हैं, किंतु जो सच बोलते हुए डांटता है उसकी त्यागपूर्ण सेवा उसे सदैव चापलूसी की अपेक्षा अधिक अनुग्रह दिलाती है। 24वें पद में माता पिता की चोरी करने वाले की निंदा की गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अपने माता पिता से चोरी करने के बारे में जरा भी शर्म नहीं आती। माता पिता की वस्तुओं को वे अपना अधिकार और हक मानते हैं, उन्हें लूटने में उन्हें कोई दर्द नहीं होता क्योंकि उनके लिए वह कोई अपराध नहीं है। किंतु माता पिता को लूटने वाले इस भ्रम में न रहें कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है। सूक्ति ग्रंथ का लेखक आगाह करता है कि प्रभु यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल कर्तव्यनिष्ठ और दयालु लोग ही उनके राज्य में प्रवेश कर पाए। और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 28वें अध्याय के अंतिम पदों पर, यानी कि 25 से लेकर 28 तक के पदों पर दृष्टिपात करें। ये पद इस प्रकार है: लालची व्यक्ति झगड़ा पैदा करता, किंतु प्रभु का भरोसा करने वाला फलेगा फूलेगा। अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित होगा। दरिद्र को दान देने वाले को किसी बात की कमी नहीं होगी, उसकी ओर से आंखें बंद करने वाला अभिशापों का शिकार बनेगा। श्रोताओं, घमंडी हो या फिर लालची, ऐसे लोग लगातार झगड़े का कारण बनते हैं, क्योंकि वे ध्यान और श्रेष्ठता चाहते हैं। वे अधिकांशतः लोगों से सहमत नहीं होते और इसीलिए झगड़े होते हैं। वे खुद को आगे बढ़ाने और खुश करने को अपना बड़ा काम समझते हैं और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों से नफरत करते हैं, उनका विरोध करते हैं, अन्यों को तुच्छ समझते हैं, नीच समझते हैं। वे अपने सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और थोड़ी सी भी उपेक्षा या अपमान अथवा चोट से अधीर हो जाते हैं। इस प्रकार लालची व्यक्ति की अतृप्त भूख उसे दूसरों के साथ संघर्ष में ले आती है और वह सामाजिक सीमाओं का उल्लंघन कर डालता है। अपने हिस्से से संतुष्ट न होकर वह विघटनकारी और विनाशकारी बन जाता है। फिर सूक्ति ग्रंथ का लेखक उस व्यक्ति की निंदा करता है जो अपने हृदय पर भरोसा करता है। ऐसा व्यक्ति मूर्ख है। सांसारिक, शारीरिक और शैतानी शक्तियां उस पर प्रबल रहा करती हैं और इसीलिए वह ईश वचन से अपने मूल्यों और नैतिकताओं को और ज्ञान को विनम्रता पूर्वक ग्रहण करने के बजाय खुद पर भरोसा करने लगता है। जबकि मूल्यों और मार्गदर्शन के लिए हमें अपने भीतर नहीं बल्कि प्रभु की ओर देखना चाहिए। संत मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में हम प्रभु येसु के इन शब्दों को पाते हैं: जो मेरी बातें सुनता किंतु उस पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उसके घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। श्रोताओं, इस सुसमाचार अंश में बुद्धिमान और मूर्ख निर्माणकर्ताओं में अंतर दर्शाया गया है। और 28वें अध्याय के अंतिम पद में सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है: जब दुष्ट प्रबल है तो सभी लोग छिप जाते हैं, जब वे नष्ट हो जाते हैं तो धर्मी फलने फूलने लगते हैं। श्रोताओं, जब दुष्टों का बोल बाला होता है तब अच्छाई पर बादल छा जाते हैं। सत्ता दुष्टों के हाथ में होती है तो आम जनता की आवाज मौन पड़ जाती है। बुद्धिमान और समझदार लोग चुप रहना बेहतर समझ लेते हैं, जबकि धनाढ्य लोग मौन रूप से अपने कामों को करते हैं। वे अंधाधुंध सत्ता का कतई विरोध नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर उनके काम पर भी संकट आ सकता है। भले लोग अपने घरों में छिप जाते हैं इस आशंका के साथ कि कहीं उनके अच्छे कर्मों के लिए उन्हें दंडित न किया जाए। इसके विपरीत जब दुष्टों का विनाश होता है तो समाज फलने फूलने लगता है। धर्म परायण लोग निडर होकर अपने काम कर पाते हैं और सच की विजय होती है।
रचनाए तेरी तुझको बखाने
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस आज अपने पोप चुने जाने की 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर कार्तिक कलीसिया में उनके महत्वपूर्ण कार्यों की याद की जा रही है, खासकर जिन्हें उन्होंने पिछले एक साल के दौरान संपन्न किए हैं। पोप फ्रांसिस ने अपने परमाध्यक्ष काल के 12वें वर्ष में कैथोलिक कलीसिया के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जबकि वे 88 साल के हो गए हैं। वे पिछले महीने से ही रोम के जेमेली अस्पताल में द्विपक्षीय निमोनिया का इलाज करा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी इस विराम से पहले पोप ने विश्वासों के साथ 45 बार देवदूत प्रार्थना या स्वर्ग की रानी प्रार्थना का संचालन किया है, 32 बार आम दर्शन समारोह आयोजित किए और 30 ख्रिस्त्याग समारोहों का अनुष्ठान किया है। साथ ही विभिन्न लोगों के साथ लगभग 230 मुलाकातें की हैं। उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को आशा की जयंती का उद्घाटन करने के लिए संत पेतुस महागिरजा घर के पौत्र द्वार खोले। उसके दो दिन बाद रेबिबिया जेल में पौत्र द्वार खोले और जयंती को जीवन के उन क्षेत्रों तक प्रतीकात्मक रूप से पहुंचाया जहां मेल मिलाप की सबसे अधिक आवश्यकता है। अक्टूबर माह में संत पापा ने सिनोडालिटी पर धर्माध्यक्ष धर्म सभा के अंतिम सत्र का नेतृत्व किया, जिसने सुनने और सहभागिता पर चर्चा में कलीसिया के सभी कोनों को शामिल करने की 3 साल की प्रक्रिया को समाप्त किया। सितम्बर में पोप ने अपनी सबसे लंबी प्रेरित यात्रा की, जो उन्हें इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सिंगापुर ले गई। उसी महीने उन्होंने लक्समबर्ग और बेल्जियम की भी यात्रा की और फिर दिसंबर में उन्होंने फ्रांस के कोसिका द्वीप का दौरा किया। मई और जुलाई के बीच संत पापा ने इतालवी शहर वेनिस, वेरोना और त्रिएस्ती की 3 प्रेरित यात्राएं की और इसी वर्ष पोप फ्रांसिस ने अपना 4वां प्रेरित विषय पत्र दिलेक्सित नोस प्रकाशित किया, जो आधुनिक समाज में यीशु ख्रिस्त के हृदय की भूमिका पर केंद्रित है। संत पापा ने विगत साल 10वें कंसिस्ट्री की भी अध्यक्षता की, जिसमें ईरान, जापान, चिली, फिलीपींस और अल्जीरिया जैसे देशों से 21 नए कार्डिनल बनाए गए। पूरे वर्ष पोप ने संघर्षरत देशों और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में कलीसिया के प्रतिनिधियों को पत्र और तार संदेश भेजे और सभी से शांति की अपील करते रहे। फिर 14 फरवरी को ब्रोंकाइटिस से कई दिनों तक पीड़ित रहने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी बीमारी के सबसे गंभीर दौर को पार करते हुए पोप ने 6 मार्च को संत पेत्रस महाकेजगर के प्रांगण में उनके लिए प्रार्थना कर रहे श्रद्धालुओं को एक ऑडियो संदेश भेजा। उन्होंने स्पैनिश में कहा, मैं प्रांगण में मेरे स्वास्थ्य के लिए की जा रही आपकी प्रार्थनाओं के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ से आपके साथ हूँ। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें और कुंवारी मरियम आपकी रक्षा करें। धन्यवाद। पोप फ्रांसिस के पोप चुने जाने की 12वीं वर्षगांठ पर पूरी कलीसिया में एक खुशी का माहौल है और पोप को दुनिया भर से बधाइयां दी जा रही हैं। अर्जेंटीना के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मॉन्सिनियर मार्सेलो कोलंबो ने पूरे देश के धर्माध्यक्षों को आमंत्रित किया है कि वे अपनी अपनी कलीसिया के विश्वासियों को बृहस्पतिवार 13 मार्च को पोप फ्रांसिस के पोप चुने जाने की 12वीं वर्षगांठ के अवसर पर उनके उदार समर्पण के लिए आभार व्यक्त करते हुए ख्रिस्त्याग में भाग लें और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। पोप के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए की जाने वाली शाम की रोजरी माला विनती आज भी शाम 6 बजे संत पॉल सभागार में की जाएगी, जिसका संचालन मॉन्सिनियर फिलिपो यानोने करेंगे। वैटिकन प्रेस कार्यालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि पोप फ्रांसिस ने रोम के जेमेली अस्पताल में आज भी एक आरामदायक रात बिताई, जहां वे निमोनिया से उबर रहे हैं। पोप के डॉक्टरों ने कहा है कि वे खतरे से बाहर हैं और एक्सरे में सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी स्थिति अब भी जटिल है, इसलिए उन्हें अस्पताल में और समय बिताने की आवश्यकता है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा गुरुवार सुबह प्रकाशित एक बयान के अनुसार पोप फ्रांसिस ने रात आराम से बिताई। बुधवार की रात प्रेस कार्यालय ने संत पापा के बारे में एक चिकित्सा अपडेट प्रदान किया, जिसमें दोहराया गया कि पोप फ्रांसिस की चिकित्सा स्थिति थोड़े सुधार के साथ स्थिर बनी हुई है, लेकिन जटिलता अभी भी है। बयान में कहा गया कि मंगलवार को छाती का एक्सरे कराया गया, जिसमें पिछले दिनों में देखे गए सुधार की पुष्टि हुई। बुधवार सुबह वैटिकन के पाव सिस्टम सभागार में जारी आध्यात्मिक साधना प्रवचन में ऑनलाइन शामिल होने के बाद पोप फ्रांसिस ने पौत्री यूखरिस्त ग्रहण किए, प्रार्थना में समय बिताया और अपनी फिजिकल थेरापी जारी रखी। दोपहर में आध्यात्मिक साधना में भाग लेने के बाद उन्होंने प्रार्थना, आराम और व्यायाम जारी रखा। संत पापा फ्रांसिस 14 फरवरी से ही रोम के जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन उनके डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अस्पताल में और समय बिताने की आवश्यकता है। पेपल परिवार के उपदेशक फादर रोबेर्टो पासोलिनी ओएफएम कैप ने रोमन कुरिया के लिए 2025 की आध्यात्मिक साधना का 8वां चिंतन प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक है ज्यादा जिएं। चिंतन में वे कहते हैं, यीशु अनंत जीवन को एक उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे अपनाया जाना चाहिए, न कि एक वस्तु के रूप में जीता जाना। सुसमाचार में धनी युवक का दृष्टांत उन लोगों के बीच अंतर को दर्शाता है जो एक पुरस्कार के रूप में अनंत जीवन की तलाश करते हैं, जबकि यीशु का निमंत्रण है कि उनका अनुसरण करने के लिए हर सुरक्षा को छोड़ना। युवक अपने आप को अपने धन से अलग नहीं कर सका, इसलिए दुखी होकर चला गया। त्यागने की कठिनाई सभी को चिंतित करती है। हम जो हमें प्रिय है उसे छोड़ने से डरते हैं, भले ही जीवन हमें ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। यीशु हमें इस मार्ग का पूर्वाभास करने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि अनंत काल पहले से ही मौजूद एक वास्तविकता बन जाए। फादर पासोलिनी कहते हैं कि अनंत काल कोई दूर का भ्रम नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है जो हमारे जीवन में तब साकार होती है जब हम अपने पास मौजूद थोड़ी सी चीज को भी भरोसे के साथ देना सीख जाते हैं। ईश्वर की नज़र में हमारे द्वारा किए गए हर प्रेमपूर्ण कार्य का एक अनंत मूल्य है। सब कुछ अनंत हो सकता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।